ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ یہ بڑی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 31 سے 32، 31 to 32۔ ان کا عنوان ہے قتل اولاد سلیش ڈالیں گے زنا کا دروازہ کھولنا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے قتل کی بات کے فوراً بعد زنا کی بات کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں بہت گہرا جوڑ رکھتی ہیں۔ جب سے برتھ کنٹرول کے طریقے ایجاد ہوئے، تب سے دنیا میں زنا کے کام جو ہیں وہ زیادہ ہونے لگے۔ جب لوگوں نے ایک چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی بجائے غلط طریقے سے استعمال کرنا چاہا، تو اس کے نتیجے میں پھر آج دنیا میں حال کیا ہے کہ پیدا ہونے والے بچوں میں سے کتنے بچوں کو ابارٹ کروا دیا جاتا ہے۔ پچھلے پارے میں ہم نے بچیوں کے ابارٹ کروانے کی بات دیکھی تھی۔ اس فگر کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ 50 بلین ابارشن ایک سال میں ہوتے ہیں۔ تقریباً 175 کنٹریز نے ابارشن کو لیگل قرار دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فیملی پلاننگ کا ایک نعرہ ہے آج کے دور میں، یہ سب سے پہلے 19th century میں مالتھس ایک شخص تھا، اس نے پیش کیا تھا، اور غالباً وہ برٹش سے ہی تھا۔ اس نے کہا تھا کہ انسانی آبادی جو ہے یہ ملٹیپل ہو رہی ہے، لیکن جو ہمارے ریسورسز ہیں یہ پلس ہو رہے ہیں۔ تو اس نے ایک فگر دیا تھا کہ اگلے 50 سال کے اندر دنیا میں کھانے پینے کو نہیں رہے گا اگر اسی رفتار سے آبادی ہوئی۔ اسی کی وجہ سے بھی فیملی پلاننگ ہوئی۔ آج یہ شخص تو دنیا میں نہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں کتنی چیزیں تھیں۔ آج اس وقت سب سے زیادہ جو چیز دنیا میں تیزی سے سستی ہوتی جا رہی ہے نا، وہ فوڈ ہے۔ آپ خود فیل کریں گے کہ جتنے ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں وہاں کھانا پینا اتنا ہی سستا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ملکوں میں مہنگائی ہے تو اس کی وجہ ہماری ہی کو پالیسیز ہیں، ادروائز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی دنیا میں کتنے حصے خالی ہیں۔ اس وقت وہ لوگ جو دنیا پہ اپنا ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہر سال اپنی فوڈ کا ایک بیشتر حصہ ڈمپ کرتے ہیں سمندروں میں، چیز اور جو ڈیری فارم کی چیزیں۔ کیوں؟ کہ اگر یہ اتنی ہیں جتنی یہ سب چلی گئیں تو ان کی ویلیو بالکل ختم ہو جائے گی۔ آج بھی دنیا میں جو بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں ان کی لینڈز کا ایک بیشتر حصہ جو ہے اس کو جان بوجھ کے کلٹیویٹ نہیں کیا جا رہا۔ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کہ اگر یہ ساری چیزوں پہ بھی فصلیں اگنے لگیں تو دنیا میں کھانا اتنا ہو جائے گا کہ ہمیں اصل قیمت سے بہت کم دینا پڑے گا۔ اس وقت بھی ایک رپورٹ تھی کہ دنیا میں جتنی زمین فرٹیلائزرز کے قابل ہے، یعنی جہاں اگ سکتا ہے، یہ 80 بلین، یعنی 80 بلین لوگوں کے لیے کھانا پرووائڈ کر سکتی ہے۔ اور شاید اس وقت دنیا کی ٹوٹل آبادی 6 بلین ہے۔ تو آپ دیکھیے 80 اور 6 میں کتنا فرق ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں کسی کو پیدا کرتا ہوں تو ساتھ اس کے 2 ہاتھ بھی تو آتے ہیں، وہ محنت کرے گا، وہ کھا لے گا۔ لہٰذا سب سے برا قتل اولاد کا وہ قتل ہے کہ جس کو لوگ رزق کی وجہ سے کرے۔ عربوں میں 3 وجہ سے اولاد کو قتل کرتے تھے۔ ایک سورۃ النحل میں ہم نے پڑھ لیا کہ بیٹیوں کی خاص طور پہ ان کی وجہ سے قتل کرنا، دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمارے ساتھ کیسے کھائیں گے، ایک تیسری وجہ تھی کہ اپنے بتوں کے نام پہ بھینٹ چڑھاتے تھے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی زبان سے بھی جب یہ جملہ سنا جاتا ہے کہ can't afford، اس کو ختم کرو کیونکہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر توکل نہ ہونے کی دلیل ہے، الرزاق ہونے کے اوپر انکار کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں زنا کی بات ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم زیادہ بات جا کے سورۃ نور میں کریں گے اللہ کے حکم سے، لیکن یہاں صرف اتنی بات کہوں گی کہ اسلام زنا کو نہیں اس کی قربات کو بھی روکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ پھر آپ یہاں اگلی آیتوں کو ساتھ ملائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زنا، قتل اور یتیمی، یہ 3 چیزیں ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ جب کبھی کہیں ایسی برائیاں ہوتی ہیں تو ایک بیماری جو ہے وہ دوسری بیماری کا پیچھا کرتی ہے۔ آگے دیکھ کے آیتوں کو پھر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و اقرار کی باز پرس ہونے والی ہے، اور ناپنے اور تولنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو، اور سیدھی طرح سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 33 سے 35، 33 سے 35۔ پہلا ٹاپک ہے قتل میں بھی زیادتی نہ کرو، دوسرا ٹاپک ہے ان آیات کا عہد شناس قابل भरोसा है। यहाँ कत्ले औलाद के बाद कत्ल की बात और यतीम की बात हमें ये साबित करती है कि जब किसी मुआशरे में जिना का दरवाज़ा खुल जाता है तो उसके नतीजे में फिर कत्ल के दरवाजे भी खुलते हैं। अमूमन देखिए कि जहाँ जिना होगा वहाँ कत्ल होगा। कैसे? बाज़ दफ़ा वो लड़कियाँ जिनके साथ ऐसे बुरे फेल होते हैं वो उस शख्स को कत्ल कर देती हैं। बाज़ दफ़ा जब दोनों की मर्जी से ऐसा गुनाह होता है तो लड़की के भाई या उसका बाप जो उस लड़के को कत्ल कर देता है। फिर इसी तरह बाज़ दफ़ा जब दोनों की पसंद से ही क्यों ना हो लेकिन उसके नतीजे में अगर औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। आपने गैरत के नाम पे कत्ल कितने ही सुने होंगे और अखबारों में अमूमन ऐसी खबरें पेश कर दी जाती हैं। तो लिहाजा कि किसी मुआशरे के अंदर से ऐसी चीज़ों का खात्मा तभी मुमकिन है जब लोगों को अल्लाह का खौफ होगा। याद रखिए कि इस्लाम ने सिर्फ कवानीन नहीं दिए, इस्लाम ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दी हैं कि जिससे एक्सेप्टेंस भी हो। जब तक लोगों को किसी चीज़ के बैड इफेक्ट्स नहीं बताए जाते वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते। आज अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के बजट को देखें तो आपको पता चलता है कि इनके अंदर एक कसीर तादाद जो है वो कत्लो गारत की रोकथाम के लिए और इस तरह के गंदी जगहों को बंद करने और कराने के लिए जहां शराब और जिना और आम चीजें हों खर्च किया जाता है। अमेरिका की एक बिग इकोनॉमी जो है वो क्राइम्स की रोकथाम पे लगती है लेकिन इसके बावजूद कोई फायदा नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर आप किसी सोसाइटी को क्राइम फ्री सोसाइटी बनाना चाहते हैं ना तो आपको उस सोसाइटी को सिन फ्री सोसाइटी बनाना पड़ेगा। इस्लाम ने क्राइम्स का खात्मा सिंस के तसव्वुर को पेश किया। जब आप किसी चीज को गुनाह समझ के छोड़ते हैं ना तो आप उसको जल्दी छोड़ देते हैं। सिर्फ हुकूमत का डर इंसान को कुछ नहीं कहता, तो लिहाजा जितना कोई शख्स अल्लाह से डरेगा उसकी जिंदगी से ये सारी चीजें जो है निकल जाएंगी। और आखिर में अहद की बात जो की गई तो हकीकत यह है कि ईमान वाले की तो कीमत ही अहद पे है। अगर अल्लाह के साथ अहद पूरा नहीं करते तो मुशरिक बन जाते हैं। इसी तरह वो बंदा जो इंसानों के साथ किए हुए वादे को पूरा ना करे वो बिल्कुल बेकीमत इंसान है, भरोसा नहीं। आप देखिए कि आप एयरपोर्ट पे जाएं और आपको पता चले कि फ्लाइट तो आ ही नहीं रही, वादे नहीं पूरा किया उन्होंने, सारा निजाम बिगड़ जाएगा। दुनिया का जो निजाम चल रहा है ना वो वादों की पाबंदी पे चल रहा है। तो लिहाजा इस्लाम में इसको बहुत ही ज्यादा अहम जगह दी कि जो बंदा अपनी बात को कह के निभा नहीं पाता तो फिर वो बंदा दूसरों की नजर में भी बिल्कुल बेवकूफ हो जाता है। आगे एक और बहुत ही खूबसूरत मौजू पे हमारी तवज्जो दिलाई जा रही है और वो क्या कि वला तकफुमा लैसा कभी इल्म, जिस बात की तुझे खबर ही ना हो इसके पीछे मत पड़ो क्योंकि कान और आंख और दिल इनमें से हर एक से पूछ गिछ की जाने वाली है। और जमीन में अकड़ कर ना चलो कि ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो ना लंबाई में पहाड़ों को पहुंच सकते हो। इन सब कामों की बुराई तेरे रब के नजदीक सख्त नापसंदीदा है। आयत नंबर 36 से 38। इसका उनवान लिखिए समो बसर और फुआद, यानी सुनना देखना और दिल के अंदर जज्बात का आना। इसके आगे फिर स्लैश डाल के आप लिखेंगे इंसान के पास अमानत है। देखिए ये वो आदत है जो फिर कहूंगी कि बाज़ दफ़ा ख़वातीन में इसका मिसयूज़ आम होता है। दूसरे का तजस्सुस रखना, दूसरे ने क्या कहा, दूसरे ने क्या किया, और इस तरह अपने दिल आंखों और कानों का गलत इस्तेमाल इंसान को अल्लाह की निगाहों में हटा देता है। इमाम कतादा कहते हैं कि मैंने देखा मत कहो अगर तुमने ना देखा हो, मैंने सुना मत कहो अगर तुमने ना सुना हो, और मैंने जाना मत कहो अगर तुमने ना जाना हो। और हकीकत है कि अगर इस एक बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो यकीन करें कि बहुत सारे स्कैंडल फैलने से बच जाएं और बहुत सारा जो किसी सोसाइटी के अंदर डिसऑर्डर फैलता है उसकी वजह क्या होती है कि हम अपने कानों और आंखों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तजस्सुस लेना असल में दूसरे की आज़ादी के अंदर खलल डालना है। अपनी जुबान से गलत बात निकालना इस बात की दलील है कि उस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं। इसलिए इन कानों आंखों को बहुत ज्यादा मुख्तात तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाल्लाह सूरह काफ के अंदर इसके ऊपर मजीद बात हो जाएगी। दूसरी चीज यहाँ चाल पे बात हुई कि तुम ऐसी चाल ना चलो कि जो अकड़ वाली चाल हो। मुझे ऐसे महसूस होता है कि कुछ लिबास ही ऐसे होते हैं कि जो बंदे की चाल को बदल देते हैं। आप आजमा के देख लें, जब बहुत टाइट लिबास पहने हुए लोग खड़े हुए होते हैं तो उनकी चाल के अंदर एक तकब्बुर का एहसास होता है। अल्लाह ताला ने बंदे को अच्छे अखलाक सिखाए। सूरह लुकमान में इंशाल्लाह इस पे मजीद बात होगी कि किस तरह से एक इंसान अपने चाल और चलन को दुरुस्त करेगा। अब यहाँ सारी बातों को बयान करने के बाद फरमाया ज़ालिक मिम्मा उहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ये भी उन अहकामात में से है जिसकी वही तेरे रब ने हिकमत के साथ उतारी। और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद मत बनाओ वरना मलामत खुर्दा और आंदा दरगाह होकर दोज़ख में डाल दिए जाओगे। ये थी आयत नंबर 39। इसका उनवान लिखिए हिकमत का तकाजा कि अल्लाह को एक मानो। यहाँ पे वो मौजू पूरा हुआ जो पीछे शुरू हुआ, और आप देखिए कितना खूबसूरत नुक्ता है कि बात भी तौहीद से हुई थी। ला तजअलु मा अल्लाह इलाहन से बात शुरू हुई और आखिर में फिर ला तजअल मा अल्लाह इलाहन आखिर। इससे पता चलता है कि जिसके दिल में तौहीद आ गई, जिसने एक रब को मान लिया, उसको फिर बाकी सारे कामों से रुकना भी आसान हो जाएगा। और ये सारे काम अमल में आते ही तब है जब एक अल्लाह की पकड़ और एक अल्लाह से कुछ पाने की उम्मीद इंसान को होने लगती है। अब आगे फिर मक्का वालों ही की कुछ आदात की तरफ इशारा है। अफअसफाकुम रब्बुकुम बिल बनीन वत्तखज मिनल मलाइकति इनासा, क्या बेटों के लिए तो अल्लाह ने तुम्हें छांट लिया और खुद अपने लिए फरिश्तों को लड़कियां बना ली। बेशक तुम बहुत बड़ा बोल बोल रहे हो, हमने तो इस कुरान में हर तरह बयान कर दिया कि लोग समझ जाएं, लेकिन इससे इन्हें तो नफरत ही बढ़ती है। कह दीजिए कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद भी होते जैसे कि ये लोग कहते हैं, तो जरूर वो अब तक मालिक अर्श की जानिब राह ढूंढ निकालते। जो कुछ ये कहते हैं इससे वो पाक और बालातर बहुत दूर और बहुत बुलंद है। सातों आसमान और जमीन और जो भी इनमें है इसी की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो इसे पाकीजगी और तारीफ के साथ याद न करती हो। हाँ ये सही है कि तुम इसकी तस्बीह समझ नहीं सकते, वो बहुत बड़ा बुर्दबार और बख्शने वाला है। ये थी आयत नंबर 40 से 44, 40 से 44। इसका अनवान है कायनात तौहीद की अलमबरदार, यानी इस पूरी कायनात में हमें यकसानियत दिखती है। ये सब एक अल्लाह के आगे झुकते हैं, उसी की मानते हैं, लेकिन लोगों को जब उस रब की बात की तरफ बुलाया जाए तो उनको इस बात से अपनी आज़ादी पे चोट पड़ती दिखती है, इसलिए फिर वो इस बात को छोड़ के दूर भागने लगते हैं। कैसे दूर भागते हैं? व इज़ा क़रातल कुरआन जालना बैनक व बैनल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा, और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और इन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते एक पोशीदा हिजाब डाल देते हैं, और इनके दिलों पर हमने पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसे समझे और इनके कानों में बोझ। और जब तो सिर्फ अल्लाह ही का जिक्र इसकी तौहीद के साथ इस कुरान में करता है तो वो रूगरदानी करते पीठ फेर कर भाग निकलते हैं। ये थी आयत नंबर 45 से 46। इनका उनवान है हक से रुकने वाली नफ्सियाती रुकावटें, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिसकी वजह से लोग हक से दूर होते हैं। और सच यही है कि लोग कुरान से दूर भागते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ही ये है कि उनको ऐसे लगता है कि अल्लाह का कलाम अगर जिंदगी में आ गया तो हमारी आज़ादी छिन जाएगी। अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खुफिया तरीके से एक पर्दे की सूरत में इस बात को बयान किया कि बाज़ दफ़ा इंसान खुद भी इसके पीछे झांक के नहीं देख पाता। हमें इस आयत को पढ़ के अपने लिए इस चीज़ की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अगर मैं किसी वजह से हक से दूर हूँ तो तू अपनी रहमत से मुझे उसके करीब कर दे। नहनु आलमु बिमा यस्तमेउन, जिस गरज से वो लोग इसे सुनते हैं इनकी नियतों से हम खूब आगाह हैं। जब ये आपकी तरफ कान लगाए हुए होते हैं तब भी, और जब ये मशवरा करते हैं तब भी, जबकि ये जालिम कहते हैं कि तुम इसकी ताबेदारी में लगे हुए हो जिन पर जादू कर दिया गया। देखें तो सही आपके लिए क्या क्या मिसालें बयान करते हैं, बस वो बहक रहे हैं, अब तो राह पाना इनके बस में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जब हम हड्डियां और मट्टी होकर रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हम अज़सरे नो दोबारा पैदा किए जाएंगे? जवाब दीजिए कि तुम पत्थर जाओ या लोहा या कोई और ऐसी खिलकत जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही सख्त मालूम हो। फिर वो ये पूछेंगे कि कौन है जो दोबारा हमारी जिंदगी लौटाए? आप जवाब दें कि वही अल्लाह जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। और इस पर वो अपने सर हिला हिला कर आपसे दरियाफ्त करेंगे कि अच्छा ये है कब? तो आप जवाब दे दीजिए क्या जब कि वो साथ करीब ही आ लगी हो। क्या होगा उस दिन? यौम यदउकुम, जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा, तुम इसकी तारीफ करते हुए तामील इरशाद करोगे और गुमान करोगे कि तुम्हारा रहना बहुत ही थोड़ा था। जी ये थी आयत नंबर 47 से 52। इन आयत का उनवान है कयामत, गैब के पर्दे के फटने का नाम। दूसरा टॉपिक लिखेंगे इन आयत का, मुनकिर वही करने पर मजबूर होगा जो मोमिन आज कर रहा है। इन सारी आयात में अल्लाह ताला ने कयामत के दिन की थोड़ी सी झलकियां हमारे सामने रखी कि आज वो लोग जो अल्लाह की बात अल्लाह के काम से दूर रहते हैं कुछ नाम लिए हुए, कल कयामत के दिन जब गैब का पर्दा छट जाएगा, अल्लाह अपनी सारी ताकत के साथ सामने आ जाएगा, तो उस दिन वो मुनकिर भी वही काम करने पर मजबूर होंगे जो आज सच्चा मोमिन अपने दिल की खुशी से करता है। और वो काम क्या है कि अल्लाह की इताअत की तरफ भागना। वकुल इबादी यकूलुल्लती ही अहसन, और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाला करें, क्योंकि शैतान आपस में फसाद डलवाता है, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये है आयत नंबर 53। इसका टॉपिक लिखिए दाई यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, और मदऊ जिसको बुलाया जाए, दाई और मदऊ का नाजुक रिश्ता, बहुत नाजुक होता है ये रिश्ता। दीन की बात करने वाला जब दीन की बात कहीं लेके आता है तो शैतान को आग लग जाती है, वो कोई ना कोई एक ऐसा जुमला उसकी जुबान से निकलवाना चाहता है कि जिसको सुन के वो शख्स दलील और हुज्जत बना के दीन से दूर हो जाए जो अभी अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली लाना नहीं चाहता। इसलिए अल्लाह की तरफ बुलाने वालों का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी जुबान की बेहतरीन हिफाजत करें। कोई उनको गुस्सा दिलाए, कोई इश्तियाल दिलाए, कोई उनको कुछ भी कहे, कोई शख्स जवाबी कार्रवाई करने की बजाय अपने आप को पीछे डाल ले, इससे क्या होगा कि दूसरे शख्स का गुस्सा और उसकी नफरत जो है वो कम होगी। और याद रखिए कि तबलीग के दौरान या दरसोवाज के दौरान दूसरों को इस काबिल कर देना कि आवाजें ऊंची होने लगे, ये शैतान को खुश करने के काबिल है। आज भी जहां बड़ी खैर के साथ भी नेकी का काम किया जाता है, एकदम बहस शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है, उसकी वजह क्या होती है कि आवाजें बुलंद होती हैं। और दीन की जगहों का एक हुसन और एक अदब क्या है कि वहां कोई आवाज बुलंद ना हो सिवाय अल्लाह के कलाम की आवाज का। अल्लाह करे कि ये बात आज के दाईयाने दीन को समझ में आ जाए। फरमाए रब्बुकुम अअलमु बिकुम, तुम्हारा रब तुमसे बनिस्बत तुम्हारे बहुत ज्यादा जानने वाला है, वो अगर चाहे तो तुम पर रहम करे और अगर वो चाहे तो तुमको अजाब दे। हमने आपको इनका जिम्मेदार ठहरा कर नहीं भेजा, आसमानो जमीन और जो कुछ उसमें है आपका रब सबको बखूबी जानता है। हमने बाज पैगम्बरों को बाज पर बेहतरी और बरतरी दी और दाऊद को जबूर हमने अता फरमाई। कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम माबूद समझ रहे हो इनको पुकारो, लेकिन ना तो वो तुमसे किसी तकलीफ को दूर कर सकते हैं और ना वो बदल सकते हैं। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं खुद वो अपने रब के तकर्रुब की जुस्तजू में लगे रहते हैं, इनमें से कौन ज्यादा नजदीक हो जाए, वो खुद इसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और इसके अजाब से खौफ सदा रहते हैं। बात भी यही है कि तेरे रब का अजाब डरने की ही चीज है। जितनी भी बस्तियां थी हम क्यामत के दिन से पहले पहले या तो इनको हलाक कर देने वाले हैं या सख्त तर सजा देने वाले हैं, ये तो किताब में लिखा जा चुका है। हमें निशानात के नाजिल करने से रोक सिर्फ उसी की है कि अगले लोग इनको छुटला चुके। हमने समूदियों को बतौर बसीरत के ऊँटनी दी लेकिन उन्होंने इस पर जुल्म किया। हम तो लोगों को धमकाने के लिए ही निशानियां भेजते हैं। और याद करो कि जबकि हमने आपसे फरमा दिया कि आपके रब ने लोगों को घेर लिया है और जो रोया यानी ऐनी रोयत हमने आपको दिखाई थी वो लोगों के लिए साफ आजमाइश ही थी, और इसी तरह वो दरख्त भी जिससे कुरान में इजहार नफरत किया गया, हम इन्हें डरा रहे हैं लेकिन ये इन्हें और सरकशी में बढ़ा रहा है। ये है आयत नंबर 54 से 60, 54 से 60। इसका उन्वान लिखेंगे, पहला टॉपिक है दूसरे को जहन्नमी कहना, खुदाई इख्तियार को अपने हाथ में लेना है। ये बात पीछे वाले तनाजर में ही थी कि बाज दफा लोग दीन के नाम पे इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो शख्स जरा उनसे मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने वाला हो उसको फौरन जहन्नमी करार देने लगते हैं। नतीजा क्या होता है, कैसे लोग फिर वो फैसला जो अल्लाह ने कल क्यामत के दिन देना था दुनिया में उसको सादर करके अल्लाह के इख्तियारात में शरीक होके अपने आप को अल्लाह की नजरों में गुनाहगार करार देते हैं। दूसरा टॉपिक लिखिए, जिनकी अपनी निगाहें रब पर लगी हैं इन पर निगाहें न लगाओ। ये शिर्क की बात थी, लोग उनके पास पहुंचते हैं जो बेचारे खुद अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के खौफ से जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन लोग जब जाहिर परस्त हो जाते हैं तो उनका यही हाल होता है। तीसरा टॉपिक लिखिए, गैर मामूली निशानियां पाकर गैर मामूली जिम्मेदारियां आयद होती हैं। ये आयतें और अब इससे आगे की कुछ मजीद आयात मक्का वालों के उन मुतालबात के जवाब में थीं कि जो वो अल्लाह के नबी के साथ गाहे बगाहे करते थे, ओहद पहाड़ को ये कर दें, सफा पहाड़ सोने का बन जाए, मदीना के अंदर कोई ऐसी चीजें निकल आए, पानी का कुआं निकल आए, चश्मा बन जाए, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि निशानियां पाने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो क्या के मानना पड़ेगा। देखिये, पिछले अंबिया कराम के साथ गैर मामूली किस्म के वाकयात आए। एक तो अल्लाह के नबियों के साथ देने वालों की नुसरत का वादा था, इसको रब्बी कहते हैं, यानी अल्लाह ने उनकी मदद की। और दूसरे वो वाकयात थे जो उनको ना मानने वालों के मुतालबे पे जाहिर हुए, जैसे कौम समूद के लिए ऊंटनी का निकलना था। जब कोई कौम अल्लाह से कोई मुतालबा करे फिर वो मुतालबा सामने आ जाए और वो ना माने तो अल्लाह ताला का दस्तूर है, उसकी सुन्नत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या कि फिर अल्लाह उस कौम को हलाक कर देता है। अल्लाह के नबी से भी बहुत सारे मुतालबे किए जाते थे लेकिन अल्लाह की रहमत है इस उम्मत पे, अल्लाह ने अल्लाह के नबी की उम्मत को क्यामत तक रखना था। इसलिए मुखालिफीन के मुतालबों के जवाब में कोई निशानी जाहिर ना दी गई। ये अलग बात है कि अल्लाह के नबी का बेहतरीन मौजज़ा ये कुरान है, क़यामत तक मौजूद है। अम्बिया कराम के मौजज़ात वक्ती तौर पर थे, थोड़ा अरसा रहे और ख़त्म। आज नबी नहीं है ख़त्म। आज आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसा कहीं नहीं दिखेगा, हज़रत ईसा वाली वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी जो उनकी ज़िंदगी में थी, लेकिन कुरान रहती दुनिया तक इंशाल्लाह असर रखेगा। लेकिन जो वो निशानियाँ मांगते थे ना कि ये सोने का बन जाए, ये चांदी का ना बने, ये अल्लाह ने क्यों पूरे ना किए? इसलिए कि अगर वो उसको मान लिया जाता और इसके बाद आपके इर्द गिर्द के जो लोग थे उस वक्त मक्का या मदीना के अराउंड रहने वाले, अगर इसके बावजूद वो आपका इनकार करते तो फिर पूरी दुनिया फिर तबाह कर दी जाती, क्योंकि आप सारी दुनिया की तरफ नबी बने थे। अल्लाह का ये प्लान नहीं था। इसलिए अल्लाह ताला ने इस नबी के साथ एक खास मामला किया कि निशानियां मांगने वाले मांगते रहे लेकिन उनकी बात पे कोई निशानी ना उतरे, वरना ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। इसी का जिक्र आगे आप पढ़ेंगे, इस सूरत में बहुत आएगा आगे, बल्कि थोड़ी सी आयतों के बाद मजीद हम पढ़ेंगे। इसी तरह की एक निशानी दिखाई गई थी ख्वाब के जरिए, आपने जहन्नुम का एक मंजर पेश किया कि वहां दरख्त है और ऐसा है, तो मक्का वालों ने बड़ा हंसी उड़ाई कि देखो एक तरफ कहते हैं आग है और दूसरे कह रहे हैं वहां दरख्त उगे होंगे, ये कैसी जहन्नुम है जिसमें दरख्त भी उगते हैं? तो उसका तस्करा आयत नंबर 60 में था कि ये जो बात अल्लाह ने नबी के जरिए इनको दिखाई थी ये भी इनके लिए एक निशानी बन गई। देखिये ना मानने के 100 बहाने, जिसको नहीं मानना वो निशानियां देख के भी नहीं मानेगा। अगली आयतें फिर अब इंसान की तख्लीक की तरफ है। इब्लीस, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने किया। इसने कहा क्या मैं इसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया? अच्छा देख ले, इसे तूने मुझ पर बुजुर्गी तो दी है, लेकिन अगर मुझे भी तू क्यामत तक की ढील देगा तो मैं इसकी औलाद को बजुज बहुत थोड़े लोगों के अपने बस में कर लूंगा। इरशाद हुआ कि जा इनमें से जो भी तेरा ताबेदार हो जाए तो तुम सबकी सजा जहन्नुम है जो पूरा पूरा बदला है। इनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज से बहका सके बहका ले और इन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ले और इनके माल और औलाद में अपना हिस्सा लगा ले और इन्हें झूठे वादे दे ले। इनसे जितने भी वादे शैतान के होते हैं सबके सब सरासर फरेब हैं। मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई काबू और बस नहीं, तेरा रब कारसाजी करने वाला काफी है। ये थी आयत नंबर 61 से 65, 61 से 65। इनका उन्वान लिखिए शैतान के वादे छूटे। दूसरा टॉपिक लिखिए सच्चे ईमान वालों पर उसका जोर नहीं। इन आयात में शैतान ने कुछ धमकियां दी थीं और वो क्या थी कि मैं औलाद आदम को बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा जाओ बहका लो। कैसे बहकाएगा ये? अपनी आवाज़ के साथ और इंसान के माल और उसके औलाद में से कुछ हिस्सा लेके। इन सारी आयात को जब हम देखते हैं तो हर वो चीज़, हर वो दावत, हर वो कॉल जो आग की तरफ ले जाए, तासुब की आवाज़, जहन्नुम की तरफ ले जाने वाली आवाज़, इसी तरह मुफसरीन की एक कसीर तादाद वस्तफ़िस मनिस्तता तमिन हम बिसौती कवाजलिब अलैहिम बिखैलिक, इसके अंदर जो बिसौत का लफ्ज़ है इससे मुराद लेते हैं कि इससे मुराद गिना है, यानी शैतान के जहन्नुम की तरफ ले जाने वाली चीज़ जिसको वो लोगों के लिए बहुत कसरत से इस्तेमाल करता है वो गीना। और गीना अरबी में गाने को कहते हैं, म्यूजिक को, सॉन्ग को कहते हैं। क्यों? आप देखिए कि गीना जो है ना यही जिना तक लेके जाता है और गीना ही है जो इंसान को शराब तक लेके जाता है। आज भी आप देखिए कि जितने लव सॉन्ग्स हैं क्या वो शौहर और बीवी के लिए होते हैं? क्या किसी फिल्म में शौहर और बीवी को नाचते कूदते दिखाते हैं? नहीं। एक झूठी मोहब्बत, एक बातिल मोहब्बत, उसको स्टेइंग टुगेदर के नाम पे आज कोई कायल कर ले अपने आप को कि ये जायज है, उसको बॉय फ्रेंडशिप गर्ल फ्रेंडशिप के नाम पे जायज कर लिया जाए, लेकिन ये सारी चीजें जो है ये शैतानों की तरफ से हैं। अल्लाह के नबी की एक रिवायत का खुलासा है कि जिस तरह बारिश से सब्जा उगता है इसी तरह गाने से निफाक उगता है। आज भी बहुत सारे लोग जो स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं कुरान की तरफ आते हैं, अच्छा लगता है, फिर अगले दिन नहीं आ पाते, कुछ दिन बैठते हैं फिर नहीं आ पाते, फिर याद करते हैं फिर याद नहीं होता, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो बहुत ज्यादा शऊर से कहूंगी वो क्या है कि अभी तक कुछ ऐसी चीजों से अपने आप को दूर नहीं कर सके कि जिन चीजों की मौजूदगी में फिर अल्लाह के कलाम का दिल पे असर नहीं होता। आप अपने आप को सच्चे दिल से अगर अल्लाह के कलाम से जोड़ना चाहते हैं ना तो अहद कर लें कि मैंने हर तरीके से म्यूजिक को अपनी जिंदगी से निकालना है, वो आपके सेल फोन हो, अल्लाह के लिए अब इसको तो बंद कर लें। लेकिन ये चीजें हमारे मिजाज को साबित करती हैं, जिस चीज से आपको चिढ़ होती है आप उस चीज को कभी भी पसंद नहीं करते। फिर दूसरी चीज ये कि किसी भी तरह से ये चीजें अगर हमारे सामने आती हैं तो इस चीज को इंसान अपनी जिंदगी से निकाले। कुछ बात इस पे इंशाल्लाह तरह सूरत लुकमान में जाके भी होगी। और इसी तरह आप देखिए कि शैतान का ये चैलेंज कि मैं इनकी औलादों और इनके मालों में से हिस्सा लूंगा, आज के दौर में कितना खुश होता होगा वो कि उसने औलादों में से भी हिस्से ले लिए और माल तो हमारा लगता ही उसकी खुशी के लिए। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे।